लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्तिगीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवाओं पर संपन्न हुई धर्मसभा 2018 के अतीत युवाओं और विश्व की सारी कलिसिया के नाम संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र क्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा सुन रहे हैं। हमने क्रिस्तुस विवित के 6वें अध्याय की शुरुआत की है जो युवाओं को अपनी जड़ों से संयुक्त रहने की बात कहता है। इस संदर्भ में हमने इस बात का जिक्र किया कि कुछ हैं जो युवाओं को उनके मार्ग से अपने स्वार्थ हेतु भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। प्रिय युवा मित्रों, एक सतही जिंदगी को बढ़ावा देने के लिए वैसे लोगों से आप अपनी जवानी छीन जाने ना दें जो सुंदरता को दिखावे के भ्रम में डाल देती है। इसे महसूस करें कि एक मेहनत करने वाले में सुंदरता है जो मैला कुचैला घर आता है, किंतु ऐसे परिस्थिति में भी वह अपने परिवार के लिए भोजन कमाने की खुशी के साथ घर लौटता है। परिवार की मेज पर एक असाधारण सुंदरता है जहां हम आपस में सभी चीजों को एक दूसरे के साथ में बांटते हैं। उस पत्नी में सुंदरता है जो थोड़ी कुरूप हो गई हो, जिसमें जवानी नहीं रह गई है, जो अस्वस्थ होने तक अपने बीमार पति की सेवा करती है। प्रेमालाप का लंबा समय बीत जाने के बाद उन दंपतियों की निष्ठा में सुंदरता है जो जीवन के पतझड़ में भी एक दूसरे को प्यार करते हैं। उन बुजुर्गों में सुंदरता है जो साथ चलते और अब भी एक दूसरे का सहारा लेते हैं। वहाँ भी एक सौंदर्य है जो दिखावे या फैशनेबल पोशाक से संबंधित नहीं है। उन पुरुष और स्त्रियों में जो अपने व्यक्तिगत पेशा को प्रेम से पूरा करते हैं, समुदाय या देश की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं, खुशहाल परिवार का निर्माण करने और सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। इस सौंदर्य को खोजने, प्रकट करने और उजागर करने के लिए जिस प्रकार ख्रिस्त ने क्रूस पर अपने प्राण निछावर किए, उसी तरह हमें सच्ची सामाजिक एकात्मकता एवं मुलाकात की संस्कृति का आधार स्थापित करना होगा। संत पापा कहते हैं, युवाओं में नुमाइश की झूठी मूर्तियों के साथ हम उन्हें एक तरह से दिखावे की राह में बढ़ता हुआ पाते हैं, जहां हमें ईश्वर के बिना एक आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के प्रयासों का साक्ष्य मिलता है। एक प्रभावकारिता का विकास जो समुदाय के बिना या दुखियों की चिंता किए बिना बढ़ रही है। गरीबों का भय, उन्हें खतरे के रूप में देखना, बहुत सारी चीजों के बारे में दावा करना जो भविष्य में स्वर्ग प्राप्ति की बातें कहती हैं, अपने में कोसों दूर दिखलाई देती है। संत पापा कहते हैं कि मैं आप सबों को वैसे कुछ भी चीजों के बारे कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन बड़े प्रेम से इस बात हेतु प्रेरित करूँगा कि आप वैसे आदर्शों के पाशे में ना पड़े। यह आपको किसी रूप में युवा नहीं बनाएगा, अपितु आप उनके गुलाम बन जाएंगे। वहीं मैं आपके लिए एक दूसरी बात को प्रस्तावित करता हूँ जो स्वतंत्रता, जोश, रचनात्मकता और नई क्षितिजों को प्राप्त करने से मिलती है। इसके साथ ही आप अपने में इस बात का ख्याल रखें कि आप अपनी जड़ों से अपने को संयुक्त रखते हों जो हमें पोषित करती और हमें जीवन में बने रहने को मदद करती है। जिस संदर्भ में मैं उस बात का जिक्र करना चाहूँगा जिसे बहुत से धर्माध्यक्षकों ने धर्म सभा के दौरान कही, जो गैर पश्चिमी संदर्भ से आती है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनके देशों में वैश्वीकरण की शुरुआत संस्कृति उपनिवेश से शुरू हो रही है, जो युवा पीढ़ियों को उनके सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों से विखंडित कर रहा है। इस संदर्भ में कलिस्या को चाहिए कि वह युवाओं के साथ चले, जिससे वे इस प्रक्रिया में अपने को अपनी अति कीमती पहचान से विमुख होने ना दें। आज वास्तव में हम युवाओं में समरूपता की प्रवृत्ति को देखते हैं, जहां वे अपनी वास्तविक पृष्ठभूमि और पहचान को खो देते और उन्हें एक प्रकार की निंदनीय वस्तुओं के रूप में देखने लगते हैं। यह हमारे लिए एक संस्कृति के विनाश को लेकर आती है, जो अपने में विशिष्ट जीवों और वनस्पति के विलुप्त होने के समान एक गंभीर स्थिति उत्पन्न करती है। यही कारण है कि पनामा में आदिवासी युवकों को अपने संबोधन के दौरान मैंने उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे अपने जड़ों की देखरेख करें, क्योंकि जड़ों से हमारे लिए शक्ति आती है, जिनके द्वारा हम विकास करते, फलते फूलते और फल उत्पन्न करते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि धर्म सभा में हमने सुना कि युवा अपने भविष्य की ओर केंद्रित होते और अपने जीवन का सामना जोश और उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन इसके साथ ही वे कई तरह की परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, जहां वे अतीत अपने जीवन के यादगार पलों को कम ध्यान देते हैं जहां से वे आते हैं। इस भांति विशेषकर वे अपने माता पिता, दादा दादियों और अपने संस्कृति से मिले उपहारों और अपने जीवन में अनुभव किए गए बहुत सी बातों को भूल जाते हैं। युवाओं को अपने समृद्ध अतीत की याद दिलाते हुए उनकी खोज करना, उसे अपनी यादों में बनाए रखना और अपने अवसरों तथा चुनावों में उनका उपयोग करना उनके प्रति हमारे सच्चे प्रेम पूर्ण कार्यों को व्यक्त करता है। ऐसा करने के द्वारा हम उन्हें उनके जीवन में विकास करने और अपने निर्णयों में मजबूत होने हेतु मदद करते हैं, जिनके लिए उनका बुलावा हुआ है। ईश वचन हमें इस बात हेतु प्रेरित करता है कि हम अपने को अपने बड़े जनों से संयुक्त रखें, जिससे हम उनके अनुभवों का लाभ उठा सकें। प्रवक्ता ग्रंथ इसके बारे में कहता है, बुजुर्गों की संगति करो और उनकी प्रज्ञा की बातों पर ध्यान दो, धर्म संबंधी चर्चा रुचि से सुनो और ज्ञान संबंधी सूक्तियाँ मत भुलाओ। यदि तुमको समझदार व्यक्ति का पता चले तो सवेरे ही उससे मिलने जाओ, उसके द्वार की देहली तुम्हारे पैरों से घिस जाए। इन सभी बातों में जीवन की लंबी अवधि जिसे हमारे बड़े जनों ने जिया और जिन बातों का अनुभव अपने जीवन में किया, हमें उन्हें सम्मान से देखने की जरूरत है। तुम बूढ़ों के सामने खड़े हो जाओ और उनका सम्मान करो, लेवी ग्रंथ कहता है। लेकिन नव युवकों का बल उनका अलंकरण है, लेकिन सिर के पके बाल बूढ़ों के मुकुट हैं। धर्म ग्रंथ का सूक्ति ग्रंथ हमें कहता है, अपने पिता अपने जन्म दाता की बात सुनो और अपनी बूढ़ी माता का तिरस्कार मत करो। हमारे माता पिता का आदर करना हमारे लिए वह पहली आज्ञा बनती है, जिसके द्वारा हम अपने लिए एक प्रतिज्ञा को पूरा होता हुआ पाते हैं, जो हमें कहती है कि अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवाओं पर संपन्न हुई धर्म सभा 2018 के अतीत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र क्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा सुनी। हम कल भी इसके बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है। चलता है, तेरे हाथों को मैं थामूं सहारा मिलता है, तेरी आंखों में मैं देखूं तृप्त होता।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस बुधवार को रोम के बाहर अपनी पहली प्रेरितिक यात्रा की सातवीं वर्षगांठ मनाने के लिए पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। संत पापा ने लाम्पेदूसा की यात्रा प्रवासियों से मुलाकात करने और अपना सामीप्य प्रकट करने के लिए की थी। वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने सोमवार को घोषणा की कि संत पापा फ्रांसिस रोम के बाहर लाम्पेदूसा द्वीप की अपनी पहली प्रेरितिक यात्रा की यादगारी में 8 जुलाई को अपने निवास संत मार्था के प्रार्थनालय में रोम के समय अनुसार पूर्वाह्न 11 बजे पवित्र मिस्सा का अनुष्ठान करेंगे। ब्रूनी ने कहा, स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए बने विभाग के प्रवासियों और शरणार्थियों के अनुभाग के कुछ कर्मचारी ही पवित्र मिस्सा समारोह में भाग ले पाएंगे। 8 जुलाई 2013 को संत पापा फ्रांसिस ने रोम के बाहर इतालवी द्वीप लाम्पेदूसा की पहली आधिकारिक यात्रा की थी। उस समय सिसिली के तट से दूर अफ्रीकी महाद्वीप से खतरनाक भूमध्य सागर की यात्रा करने वाले प्रवासियों का एक विशाल समूह देखने को मिलता था, जो छोटी नावों द्वारा इटली होते हुए यूरोप के देशों में प्रवेश करने का प्रयास करते थे। तथाकथित अरब स्प्रिंग, जो 2010 के अंत में शुरू हुआ था, कई उत्तरी अफ्रीकी देशों में अशांति पैदा कर दी थी, जिससे कई अपना देश छोड़ भागने के लिए मजबूर हो गए थे। लाम्पेदूसा के तट पर दसियों हजार प्रवासी आए, जो टूनीशिया के तट से 113 किलोमीटर दूर है। अपनी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना की जो यूरोप में बेहतर जीवन की तलाश में अपने देश से बाहर आए, परंतु रास्ते में समुद्र में ही डूब गए। संत पापा ने समुद्र में फूलों की एक माला अर्पित कर मृतकों के लिए शोक मनाया और खुले स्थान पर पवित्र मिस्सा का अनुष्ठान किया। उस समय वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक फादर फेडरिको लोम्बार्डी एसजे थे। उन्होंने इन शब्दों में संत पापा की यात्रा का वर्णन किया, यह महत्वपूर्ण बात है कि इस दिन के वास्तविक महत्व को हमें समझना होगा। संत पापा के लिए यह यात्रा सबसे पहले उन लोगों के प्रति एकजुटता को प्रदर्शित करना था और लोगों का ध्यान उस समय की गंभीर समस्या प्रवासन की ओर आकर्षित करना था। उधर संस्कृति के लिए बने परम धर्म पीठ्य सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल जॉन फ्रांको रावसी ओस्कर विजेता इतालवी संगीतकार एनियो मोरिकोन की यादें साझा करते हैं, जिनका 91 वर्ष की उम्र में सोमवार को रोम में निधन हो गया। वाटिकन न्यूज के जॉन कार्लो के साथ दिवंगत संगीतकार की यादों को साझा करते हुए कार्डिनल जॉन फ्रांको ने याद किया कि एनियो मोरिकोन ईश्वर भक्त व्यक्ति थे। कार्डिनल जॉन फ्रांको ने कहा कि वे कम से कम दो विशेष आध्यात्मिक घटनाओं के लिए इस महान सिनेमा संगीतकार को याद करेंगे। पहली बार कार्डिनल रावसी ने याद किया जब वे पोलैंड में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के लिए एक उपासना गृह तैयार कर रहे थे। दूसरी घटना 15 अप्रैल 2019 की है, जब मैंने उन्हें संत पापा फ्रांसिस के नाम पर पोंटिफिकल गोल्ड मेडल उनके संगीत के लिए प्रस्तुत किया था। कार्डिनल ने कहा कि संगीतकार के संगीत में हमेशा एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयाम था, चाहे वह द मिशन या पाश्चात्य फिल्म बना रही हों। मोरिकोन संगीत के साथ साथ स्क्रीन छवियों के नायक भी थे। उन्होंने एक वार्षिक सत्र के दौरान मोरिकोन को एक संगीतज्ञ के रूप में अपने अनुभव को साझा करने और सुंदरता विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया था। एनियो मोरिकोन अप्रभावी और अदृश्य को व्यक्त करने में सक्षम थे, जो धर्म की आत्मा है। उधर बुर्किनाबे पुरोहित फादर मोडेस्टे ओडेरागो पश्चिम अफ्रीकी देश में कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों और अस्पताल में बेहतर संसाधनों की मांग कर रहे हैं। सोमवार तक बुर्किना फासो ने कथित तौर पर कोरोना वायरस के 987 मामलों की पुष्टि की और कुल 53 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस ने अफ्रीकी महाद्वीप के 4,00,000 से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। इस स्थिति की प्रतिक्रिया करते हुए कमेलियन धर्म संघ के फादर ओडेरागो ने कहा कि अफ्रीकी देशों में सबसे अधिक मृत्यु दर पश्चिम अफ्रीका में है। उन्होंने कहा कि संसाधनों और योग्य कर्मियों की कमी के कारण हम सब गंभीर मामलों का उपचार नहीं कर पाते हैं। फादर मोडेस्टे संत कामिलस अस्पताल औगाडोगू में एक डॉक्टर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि पूरे देश में 20 मिलियन लोगों के लिए केवल 17 रेस्पिरेटर हैं और कोविड 19 रोगियों के लिए केवल 3 अस्पताल समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए मास्क और सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी है और अस्पतालों में योग्य कर्मचारियों की भी कमी है। संत कामिलस अस्पताल में लगभग 401 स्थायी कर्मचारी हैं और 100 बाहरी कर्मचारी हैं, जो लगभग 900 मरीजों की देखभाल करते हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने सोमवार को आतंकवाद निरोधक सप्ताह के वर्चुअल रूप से आयोजित आरंभिक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस्लामिक स्टेट, दाएश, अलकायदा, श्वेत वर्चस्ववादी समूहों सहित अन्य आतंकवादी गुट वैश्विक महामारी कोविड 19 से उपजे संकट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे रोका जाना होगा। उन्होंने आतंकवाद के उभरते नए रूपों जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल, साइबर हमलों और जैविक आतंकवाद के खतरे के प्रति आगाह करते हुए जवाबी कार्रवाई के लिए 5 अहम क्षेत्रों में कार्रवाई का खाका पेश किया है। उन्होंने कहा, वायरस की तरह आतंकवाद भी राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करता। यह सभी राष्ट्रों को प्रभावित करता है और इसे सामूहिक रूप से ही हराया जा सकता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।